एक पखवाड़ा बीत गया। संध्या का समय था। शहर में बर्फ की दुकानों पर जमघट होने लगा था। हुक्के और सिगरेट से लोगों को अरुचि होती जाती थी। ज्वाला सिंह लखनपुर से मौके की जांच करके लौटे थे और गर्मी कुर्सी पर बैठे ठंडा शरबत पी रहे थे कि शीलमणि ने आकर पूछा, दोपहर को कहाँ रह गए थे? ज्वाला, बाबू प्रेमशंकर का मेहमान रहा, वह अभी देहात में ही है। शील, अभी तक बीमारी का जोर कम नहीं हुआ? ज्वाला, नहीं, अब कम हो रहा है। वह पूरे 15 दिन से देहातों में दौरे कर रहे हैं, एक दिन भी आराम से नहीं बैठे। गांव की जनता उनको पूजती है, बड़े बड़े हाकिम का भी इतना सम्मान न होगा। न जाने इस तपन में उनसे कैसे वहां रहा जाता है। न पंखा, न टट्टी, न शरबत, न बर्फ, बस पेड़ के नीचे झोपड़े में पड़े रहते हैं। मुझसे तो वहां एक दिन भी न रहा जाए। शील, परोपकारी पुरुष जान पड़ते हैं। क्या हुआ, तुमने मौका देखा? ज्वाला, हाँ खूब देखा। जिस बात का संदेह था वही सच्ची निकली। ज्ञान शंकर का दावा बिल्कुल निस्सार है। उनके मुख्तार और चपरासियों ने मुझको बहुत चकमा देना चाहा, लेकिन मैं इन लोगों के हथकंडे को खूब जान गया। बस हाकिमों को धोखा देकर अपना मतलब निकाल लेते हैं। जरा इस भल मनसाहत को देखो कि असामियों के तो जान के लाले पड़े हुए हैं और इन्हें अपने प्याले भर खून की धुन सवार है। इतना भी नहीं हो सकता कि जरा गांव में जाकर गरीबों की तसल्ली तो करते? इन्हीं का भाई है कि जिम्मेदारी पर लात मारकर दीनों की निस्वार्थ सेवा कर रहा है, अपनी जान हथौली पर लिए फिरता है, और यह एक महापुरुष है कि दीनों की हत्या करने से भी नहीं हिचकते। मेरी निगाह में तो अब इनकी आधी इज्जत भी नहीं रही, खाली ढोल है। शील, तुम जिसकी बुराई करने लगते हो उसकी मिट्टी पलीत कर देते हो। मैं भी आदमी पहचानती हूँ। ज्ञान शंकर देवता नहीं, लेकिन जैसे सब आदमी होते हैं वैसे वह भी हैं। खामोखा दूसरे से बुरे नहीं। ज्वाला, तुम उन्हें जो चाहो समझो, पर मैं तो उन्हें महालोभी, क्रूर और दुरात्मा समझता हूँ। शील, तब तो तुम उनका दावा अवश्य ही खारिज कर दोगे। ज्वाला, कदापि नहीं। मैं यह सब जानते हुए भी उन्हीं की डिग्री करूँगा, चाहे अपील से मेरा फैसला मनसूख हो जाए। शील प्रसन्न होकर, हाँ बस मैं भी यही चाहती हूँ, तुम अपनी सी कर दो जिसमें मेरी बात बनी रहे। ज्वाला, लेकिन यह सोच लो कि तुम अपने ऊपर कितना बड़ा बोझ ले रही हो। लखनपुर में प्लेग का भयंकर प्रकोप हो रहा है, लोग तबाह हुए जाते हैं, खेत काटने की भी किसी को फुर्सत नहीं मिलती। कोई घर ऐसा नहीं जहाँ से शोक विलाप की आवाज़ ना आ जाती हो। घर के घर अंधेरे हो गए, कोई नाम लेने वाला भी न रहा। उन गरीबों में अब अपील करने की सामर्थ्य नहीं। ज्ञान शंकर डिग्री पाते ही जारी कर देंगे। किसी के बैल नीलाम होंगे, किसी के घर बिकेंगे, किसी की फसल खेत में खड़ी खड़ी कोड़ियों के मोल नीलाम हो जाएगी। उन दिनों की हाय किस पर पड़ेगी? यह खून किसकी गर्दन पर होगा? मैं बदनामी से नहीं डरता, लेकिन अन्याय और अनर्थ से मेरे प्राण कांपते हैं। शीलमणि यह व्याख्यान सुनकर कांप उठी। उसने इस मामले को इतना महत्वपूर्ण न समझा था। उसका मौन व्रत टूट गया। बोली, यदि यह हाल है तो आप वही कीजिए जो न्याय और सत्य कहेगा। मैं गरीबों की आह नहीं लेना चाहती। मैं क्या जानती थी कि जरा से दावे का यह भीषण परिणाम होगा। ज्वाला सिंह के हृदय पर से एक बोझ उतर गया। शीलमणि को अब तक वह न समझते थे। बोले, विद्यावती के सामने कौन सा मुंह लेकर जाओगी? शीलमणि, विद्यावती ऐसे क्षुद्र विचारों की स्त्री नहीं है, और अगर वह इस तरह मुझसे रूठ भी जाए तो मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैत्री के पीछे क्या गरीबों का गला काट लिया जाए? मैं तो समझती हूँ वह ज्ञान शंकर से चिढ़ती है। जब कभी उन्होंने मुझसे इस दावे की चर्चा की है, वह मेरे पास से उठकर चली गई है। उसकी माया लिप्सा उसे एक आंख नहीं भाती। दावा खारिज होने की खबर सुनकर वह मन में प्रसन्न होगी। ज्वाला, उस पर आपका दावा है कि गायत्री के इलाके का प्रबंध करेंगे, उनकी इनमें एक भी दिन न निभेगी, वह बड़ी दयावती है। शीलमणि, दावा खारिज करने पर वह अपील कर दें तो? ज्वाला, हाँ बहुत संभव है, अवश्य करेंगे। शील, और वहाँ से इनका दावा बहाल हो सकता है? ज्वाला, हाँ हो सकता है। शील, तब तो वह गरीब खेतिहरों को और भी पीस डालेंगे। ज्वाला, हाँ यह तो उनकी प्रकृति ही है। शील, तुम खेतिहरों की कुछ मदद नहीं कर सकते? ज्वाला, न यह मेरे अख्तियार से बाहर है। शील, किसानों को कहीं से धन की सहायता मिल जाए तब तो वह न हारेंगे। ज्वाला, हार जीत तो हाकिम के निश्चय पर निर्भर है, हाँ उन्हें मदद मिल जाए तो वह अपने मुकदमे की पैरवी अच्छी तरह कर सकेंगे। शील, तो तुम कुछ रुपये क्यों नहीं देते? ज्वाला, वाह इस अन्याय से भागता हूँ, वही करूँ। शील, प्रेमशंकर दयालु हूँ, उनके पास रुपए हों तो वह खेतिहरों की मदद करें। ज्वाला, मेरे विचार से वह इस न्याय के लिए अपने भाई से बैर न करेंगे। इतने में बाहर कई मित्र आ गए। ग्वालियर का एक नामी जल तरंगिया आया हुआ था। क्लब में उसका गाना होने वाला था, लोग क्लब चल दिए। दूसरी तारीख पर ज्ञान शंकर का मुकदमा पेश हुआ। ज्वाला सिंह ने फैसला सुना दिया, उनका दावा खारिज हो गया। ज्ञान शंकर उस दिन स्वयं कचहरी में मौजूद थे। यह फैसला सुना तो दांत पीस कर रह गए। क्रोध में भरे हुए घर आए और विद्या पर जले दिल की फफोले फोड़े। आज बहुत दिनों के बाद लाला प्रभाशंकर के पास गए और उनसे भी इस असद व्यवहार का रोना रोवाए। एक सप्ताह तक यही क्रम चलता रहा। शहर में कोई परिचित आदमी न था जिससे उन्होंने ज्वाला सिंह के कपट व्यवहार की शिकायत न की। यहाँ तक रिश्वत का दोषारोपण करने में भी संकोच न किया और उन्हें शब्दाघातों से ही तस्कीन न हुई। कलम की तलवार से भी चोटें करनी शुरू की। कई दैनिक पत्रों में ज्वाला सिंह की खबर ली। इस पत्र में देखिए, उसी में उनके विरुद्ध कालम भरे रहते थे। एंग्लो इंडियन पत्रों को हिंदुस्तानियों की अयोग्यता पर टिप्पणी करने का अच्छा अवसर हाथ आया। एक महीने तक यही रौला मचा रहा। ज्वाला सिंह के जीवन का कोई अंग कलंक और अपवाद से न बचा। एक संपादक महाशय ने तो यहाँ तक लिख मारा कि उनका मकान शहर भर के रसिकजनों का अखाड़ा है। ज्ञानशंकर की रचना कौशल ने उनके मनोमालिन्य के साथ मिलकर ज्वाला सिंह को अत्याचार और अविचार का कालादेव बना दिया। बेचारे लेखों को पढ़ते थे और मन ही मन ऐंठ कर रह जाते थे। अपनी सफाई देने का अधिकार न था। कानून उनका मुंह बंद किए हुए था। मित्रों में ऐसा कोई न था जो पक्ष में कलम उठाता। पत्रों की मिथ्यावादिता पर कूड़ कूड़ कर रह जाते थे, जो सत्यासत्य का निर्णय किए बिना अधिकारियों पर छींटे उड़ाने में ही अपना गौरव समझते थे। घर से निकलना मुश्किल हो गया। शहर में जहाँ देखिए यही चर्चा थी। लोग उन्हें आते जाते देख कर खुले बंदों उनका उपहास करते थे। अफसरों की निगाह भी बदल गई। जिलाधीश से मिलने गए, उसने कहला भेजा, मुझे फुर्सत नहीं है। कमिश्नर एक बंगाली सज्जन थे, उनके पास फरियाद करने गए। उन्होंने सारा वृत्तांत बड़ी सहानुभूति के साथ सुना, लेकिन चलते समय बोले, यह असंभव है कि इस हलचल का आप पर कोई असर न हो। मुझे शंका है कहीं यह प्रश्न व्यवस्थापक सभा में न उठ जाए। मैं यथाशक्ति आप पर आँच न आने दूंगा, लेकिन आपको न्यायोचित समर्थन करने के लिए कुछ नुकसान उठाने पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सन्मार्ग फूलों की सीज नहीं है। एक दिन ज्वाला सिंह इन चिंताओं में मग्न बैठे थे कि प्रेम शंकर आए। ज्वाला सिंह दौड़कर उनके गले लिपट गए। आंखें सजल हो गईं, मानो अपने किसी परम हितैषी से भेंट हुई हो। कुशल समाचार के बाद पूछा, देहात से कब लौटे? प्रेम शंकर, आज ही आया हूँ। पूरे 1.5 महीने लग गए। 2-3 दिन का इरादा करके घर से चला था। हाजीगंज वाले बार बार बुलाने न जाते तो जेठ भर वहाँ और रहता। ज्वाला, बीमारी क्या हालत है? प्रेम शंकर, शांत हो गई है। यह कहिए, समाचार पत्रों में क्या हर बोग मचा हुआ है? मैंने तो आज देखा। दुनिया में क्या हो रहा है इसकी कुछ खबर ही न थी। यह मंडली तो बेतरा आपके पीछे पड़ी हुई है। ज्वाला, उनकी कृपा है और क्या कहूँ। प्रेम, मैं तो देखते ही समझ गया कि यह ज्ञान शंकर के दावे को खारिज कर देने का फल है। ज्वाला, अब ज्ञान शंकर ने से कभी ऐसी आशा न थी कि मुझे अपना कर्तव्य पालन करने का यह दंड दिया जाएगा। अगर वह केवल मेरी न्याय और अधिकार संबंधी बातों पर आघात करते तब भी मुझे खेद न होता। मुझे अत्याचारी कहते, जुल्मी कहते, निरंकुश सिद्ध करते, हम इन आक्षेपों की आदि होते हैं। दुख इस बात का है कि मेरे चरित्र को कलंकित किया गया है। मुझे अगर किसी बात का घमंड है तो वह अपने आचरण का है। मेरे कितने ही रसिक मित्र मुझे वैरागी कहकर चिढ़ाते हैं और यहाँ मैं कभी थिएटर देखने नहीं गया, कभी मेला तमाशा तक नहीं देखा। बाबू ज्ञानशंकर इस बात से भली भांति परिचित है, लेकिन मुझे सारे शहर में छैलों का नेता बनाने में उन्हें लेश मात्र संकोच न हुआ। इन आक्षेपों से मुझे इतना दुख हुआ है कि उसे प्रकट नहीं कर सकता। कई बार मेरी इच्छा हुई कि विष खा लूँ। आपसे मेरा परिचय बहुत थोड़ा है, लेकिन मालूम नहीं क्यों जी चाहता है कि आपके सामने हृदय निकाल कर रख दूँ। मैंने कई बार जहर खाने का इरादा किया, किंतु यह सोचकर कि कदाचित इससे इन आक्षेपों की पुष्टि हो जाएगी, रुक गया। यह भय भी था कि शील मणि रो रोकर प्राण न त्याग दे। सच पूछिए तो इसी से श्रद्धा में प्रेम ने अब तक मेरी प्राण रक्षा की है। अगर वह एक क्षण के लिए भी मुझसे विमुख हो जाती तो मैं अवश्य ही आत्मघात कर लेता। ज्ञानशंकर मेरे स्वभाव को जानते हैं। मैं और वह वर्षों तक भाइयों के भांति रहे हैं। उन्हें मालूम है कि मेरे हृदय में मर्म स्थान कहाँ है। इसी स्थान को उन्होंने अपनी कलम से बेधा और मेरी आत्मा को सदा के लिए निर्बल बना दिया। प्रेम, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि इन पत्रों पर मानहानि का अभियोग चलाइए। इसके सिवा अपने को निर्देश सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं है। मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं कि ज्ञान शंकर पर इसका क्या असर पड़ेगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड मिलना चाहिए। मैं स्वयं सहिष्णुता का भक्त हूँ, लेकिन यह असंभव है कि कोई मेरे चरित्र पर मिथ्या कलंक लगाए और मैं मौन धारण किए बैठा रहूँ। आप अकेले से सलाह लेकर अवश्य मानहानि का मुकदमा चलाइए। ज्वाला सिंह कुछ सोचकर बोले, और भी बदनामी होगी। प्रेम, कदापि नहीं। आपको इन मिथ्याक्षेपों का प्रतिवाद करने का अवसर मिलेगा और जनता की दृष्टि में आपका सम्मान बढ़ जाएगा। ऐसी दशा में आपका चुप रह जाना अच्छा महीने दूषित है। यह न समझिए कि मुझे ज्ञान शंकर से द्वेष या अपवाद से प्रेम है। मैं इस मामले को केवल सिद्धांत के निष्पक्ष दृष्टि से देखता हूँ। मान रक्षा हमारा धर्म है। ज्वाला, मैं नतीजों को सोचकर कातर हो जाता हूँ। बाबू ज्ञान शंकर का फंस जाना निश्चित है। मुमकिन है जेल की नौबत आए। वह आत्मिक कष्ट मेरे लिए इससे कहीं असह्य होगा। जिससे वर्षों तक भ्रातृवत प्रेम रहा उसे दांत काटी रोटी थी उससे मैं इतना कठोर नहीं हो सकता। मैं तो इस विचार मात्र से ही कांप उठता हूँ। इन आक्षेपों से मेरी केवल इतनी हानि होगी कि यहाँ से तब्दील हो जाऊँगा या अधिक से अधिक पदच्युत हो जाऊँगा, परंतु ज्ञान शंकर तबाह हो जाएंगे। मैं अपने दुरावेशों को पूरा करने के लिए उनके परिवार का सर्वनाश नहीं कर सकता। प्रेमशंकर ने ज्वाला सिंह को श्रद्धापूर्ण नेत्रों से देखा। इस आत्मोत्सर्ग के सामने उनका सिर झुक गया, हृदय सदनुराग से परिपूर्ण हो गया। ज्वाला सिंह के पैरों पर गिर पड़े और सजल नेत्र होकर बोले, भाई जी, आपको परमात्मा ने देव स्वरूप बनाया है। मुझे अब तक न मालूम था कि आपके हृदय में ऐसे पवित्र और निर्मल भाव छिपे हुए हैं। ज्वाला सिंह झिझक कर पीछे हट गए और बोले, भैया, ईश्वर के लिए यह अन्याय न कीजिए। मैं तो अपने को इस योग्य नहीं पाता कि आपके चरणाविंद अपने माथे से लगाऊं। आप मुझे कांटों में घसीट रहे हैं। प्रेमशंकर, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं उन्हीं पत्रों में इन आक्षेपों का प्रतिवाद कर दूं। ज्वाला सिंह वास्तव में प्रतिवाद की आवश्यकता को स्वीकार करते थे, किंतु इस भय से कि कहीं मेरी सम्मति मुझे इस उच्च पद से गिरा न दे जो मैंने अभी प्राप्त किया है, इनकार करना उचित जान पड़ा। बोले, जी नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं। प्रेमशंकर के चले जाने के बाद ज्वाला सिंह को खेद हुआ कि प्रतिवाद का ऐसा उत्तम अवसर हाथ से निकल गया। अगर इनके नाम से प्रतिवाद निकलता तो वह सारा मिथ्या जाल मकड़ी के जालों के सदृश कट जाता। पर अब जो हुआ सो हुआ, एक साधु पुरुष के हृदय में स्थान तो मिल गया। प्रेमशंकर घर तक जाने का विचार करके हाजीपुर से चले थे। महीने से घर का कुछ और समाचार न मिला था, लेकिन यहाँ से उठे तो 9 बज गए थे। जेठ की लू चलने लगी थी। घर से हाजीपुर लौटना दुस्तर था, इसीलिए किसी दूसरे दिन आने का इरादा करके लौट पड़े। लेकिन ज्ञान शंकर को चैन कहा। उन्हें जो ही मालूम हुआ कि भैया देहात से लौट आए हैं, वह उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो गए। ज्वाला सिंह को उनकी नज़र में से गिराना आवश्यक था। संध्या समय था। प्रेमशंकर अपने झोपड़े के सामने वाले गमले में पानी दे रहे थे कि ज्ञान शंकर आप पहुंचे और बोले, क्या मजूर कहीं चला गया है? प्रेमशंकर, मैं भी तो मजूर ही हूँ। घर पर सब कुशल है ना? ज्ञान, जी हाँ, सब आपकी दया है। आपके यहाँ तो कई मजदूर हलवाहे होंगे, क्या वह इतना भी नहीं कर सकते कि इन गमलों को सींच दे? आपको व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ता है। प्रेम, मुझे उनसे काम लेने का कोई अधिकार नहीं है। वह मेरे निज के नौकर नहीं है। मैं केवल यहाँ वहाँ का निरीक्षक हूँ। और फिर मैंने अमेरिका में तो हाथों से बर्तन धोए हैं, होटलों की मेजें साफ की हैं, सड़कों पर झाड़ू दी है। यहाँ आकर मैं कोई और तो नहीं हो गया? मैंने यहाँ कोई खिदमतगार नहीं रखा है, अपना सब काम कर लेता हूँ। ज्ञान, तब तो आपने हद कर दी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्यों अपनी आत्मा को इतना कष्ट देते हैं? प्रेम, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। हाँ, इसके विरुद्ध आचरण करने में अलबत्ता कष्ट होगा, मेरी आदत ही ऐसी पड़ गई है। ज्ञान, या तो आप मानते हैं कि आत्मिक उन्नति की भिन्न भिन्न कक्षाएँ होती हैं? प्रेम, मैंने इस विषय में कभी विचार नहीं किया है और न अपना सिद्धांत स्थिर कर सकता हूँ। इस मुकदमे की अपील अभी दायर की या नहीं? ज्ञान, जी हाँ, दायर कर दी। आपने ज्वाला सिंह की सज्जनता देखी? यह महाशय मेरे बनाए हुए हैं। मैंने इन्हें रटा रटा के बीए पास कराया, अपना हर्ज करता था, पर पहले इनकी कठिनाइयों को दूर कर देता था। इस नेकी का इन्होंने यह बदला दिया, ऐसा कृतज्ञ मनुष्य मैंने नहीं देखा। प्रेम, पत्रों में उनके विरुद्ध जो लेख छपे हुए हैं वो तुम्हें ने लिखे थे? ज्ञान, जी हाँ। जब वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तब मैं क्यों उनसे रियायत करूँ? प्रेम, तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल न्याय विरुद्ध था। उन्होंने जो कुछ किया न्याय समझ कर किया। उनका उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुँचाना न था, तुमने केवल उनका अनिष्ट करने के लिए वह आक्षेप किए। ज्ञान, जब आपस में अदावत हो गई तब सत्यासत्य का विवेचन कौन करता है? धर्मयुद्ध का समय अब नहीं रहा। प्रेम, तो यह सब तुम्हारी मिथ्या कल्पना है? ज्ञान, जी हाँ, आपके सामने लेकिन दूसरों के सामने। प्रेम, बात काटकर, वह मानहानि का दावा कर दे तो? ज्ञान, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए और उनमें हिम्मत का नाम नहीं है। यह सब रूप दाव दिखाने को ही है। अपील का फैसला मेरे अनुकूल हुआ तुम अभी उनकी और खबर लूँगा। जाते कहाँ हैं? और कुछ न हुआ तो बदनामी के साथ तब्दील तो हो ही जाएंगे। अब की तो आपने लखनपुर की खूब सैर की, असमियों ने मेरी खूब शिकायत की होगी। प्रेम, हाँ, शिकायत तो सभी कर रहे हैं। ज्ञान, लड़ाई दंगे का तो कोई भय नहीं है? प्रेम, मेरे विचार में तो इसकी संभावना नहीं है। ज्ञान, अगर उन्हें मालूम हो जाए कि इस विषय में हम लोगों में मतभेद है, और यह स्वाभाविक है क्योंकि आप अपने मनोगत भाव को छिपा नहीं सकते, तो वह और भी शेर हो जाएंगे। प्रेम हंसकर, इसमें हानि क्या होगी? ज्ञान, आपके सिद्धांतों के अनुसार तो कोई हानि न होगी, पर मैं कहीं का न रहूँगा। इसमें मेरे हित के लिए यह आवश्यक है कि आप उधर आना जाना कम कर दें। प्रेम, क्या तुम्हें संदेह है कि मैं आसामियों को उभाड़ कर तुमसे लड़ाता हूँ? मुझे तुमसे कोई दुश्मनी है? मुझे लखनपुर के ही नहीं सारे देश के कृषकों से सहानुभूति है, लेकिन इसका यह आशय नहीं कि मुझे जमींदारों से कोई द्वेष है। हाँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं उधर न जाऊँ तो यही सही, अब से कभी न जाऊँगा। ज्ञान शंकर को इत्मीनान तो हुआ, पर वह इसे प्रकट न कर सके। मन में लज्जित थे। अपने भाई की रजोवृत्ति के सामने उन्हें अपनी तमोवृत्ति बहुत ही निकृष्ट प्रतीत होती थी। वह कुछ देर तक कपास और मक्का खेतों को देखते रहे जो यहाँ बहुत पहले ही बो दिए गए थे, फिर घर चले आए। श्रद्धा के बारे में न प्रेमशंकर ने कुछ पूछा और न ही उन्होंने कुछ कहा। श्रद्धा अब उनके प्रेसी नहीं उपास्य देवी थी। दूसरे दिन 10 बजे डाकी ने उन्हें एक रजिस्टर्ड लिफाफा दिया। उन्होंने विस्मित होकर लिफाफों को देखा। पता लिखा हुआ था खोला तो 500 का एक करेंसी नोट निकला। एक पत्र भी था जिसमें लिखा हुआ था, लखनपुर वालों की सहायता के लिए यह रुपये आपके पास भेजे जाते हैं, यह आप अपील की पैरवी करने के लिए उन्हें दे दे, इस कष्ट के लिए क्षमा कीजिएगा। प्रेमशंकर सोचने लगी, इसका भेजने वाला कौन है? यहाँ मुझे कौन जानता है? कौन मेरे विचारों से अवगत है? किसे मुझ पर इतना विश्वास है? इन सब प्रश्नों का उत्तर मिला था ज्वाला सिंह, किंतु मन इस उत्तर को स्वीकार न करता था। अब उन्हें यह चिंता लगी थी कि यह रुपये क्यों कर भेजूँ। ज्ञान शंकर को मालूम हो गया तो वो समझेगी कि मैंने स्वयं आसामियों को सहायता दी है। उन्हें कभी विश्वास न आएगा कि एक किसी अन्य व्यक्ति की अमानत है। यदि आसामियों को न दूँ तो महान विश्वासघात होगा। इसी हैस बहस में शाम हो गई। लाला प्रभा शंकर का शुभागमन हुआ। ज्ञान शंकर को अपील के सफल होने का पूरा विश्वास था। उन्हें मालूम था कि किसानों में धनाभाव के कारण वह बिल्कुल दम नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि काश्तकारों की ओर से भी मुकदमे की पैरवी उत्तम रीति से की जा रही है तो उन्हें अपनी सफलता में कुछ कुछ संदेह होने लगा। उन्हें विस्मय होता था कि इनके पास रुपए कहाँ से आए। गौस खां तो कहता था कि बीमारी से इनकी सभी कमेटियाँ मेट कर दिया है, कोई पैरवी की अपील करने भी न जाएगा, एक तरफा डिग्री होगी, यह काया पलट क्यों कर हुई। अवश्य इनको कहीं न कहीं से मदद मिली है, कोई महाजन खड़ा हो गया है। शहर में तो कोई ऐसा नहीं दिख पड़ता, लखनपुर के आसपास का होगा। खैर अभी तो रहस्य खुलेगा, तब बच्चों से समझूंगा। फैसले के दिन वह स्वयं कचहरी गए, अपील खारिज हो गई। सबसे पहले गौस खां सामने आए, उनसे डपट कर बोले, क्यों जनाब, आप तो फरमाते थे इन सबों के पास कौड़ी कफन को नहीं है, यह वकील क्या यूं ही आ गया है? गौस खां ने भी गर्म होकर कहा, मैंने हजूर से बिल्कुल सही अर्ज किया था, लेकिन मैं क्या जानता था कि मालिकों में इतनी निफाक है। मुझे पता चलता कि हजूर के बड़े भाई साहब ने एक हफ्ता हुआ कादिर को अपील की पैरवी के लिए 1000 रुपये दिए हैं। ज्ञान शंकर स्तंभित हो गए। एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल झूठ है गौस खां, हरगिज नहीं। मेरे चपरासियों ने कादिर खां को अपनी जबान से यह कहते सुना है। उससे पूछा जाए तो वह अपने आप ही साफ साफ कह देगा, या अपने भाई साहब से खुद पूछ सकते हैं। ज्ञान शंकर निरुत्तर हो गए। उसी समय पैर गाड़ी संभाले झल्लाए हुए घर आए और श्रद्धा से तीव्र स्वर में बोले, भाभी तुमने देखी भैया करामात, आज पता चल गया कि आपने लखनपुर वालों को अपील की पैरवी करने के लिए 1000 दिए हैं। इसका फल यह हुआ कि मेरी अपील खारिज हो गई। महीनों की दौड़ धूप पर 1000 रुपये पर पानी फिर गया, 1000 सालाना का नुकसान हुआ और रोब दाब बिल्कुल मिट्टी में मिल गया। मुझे उनसे ऐसी कूटनीति की आशंका न थी। अब तुम्हें बताओ, उन्हें दोस्त समझो या दुश्मन? श्रद्धा ने संशयात्मक भाव से कहा, तुम्हें किसी ने भगा दिया होगा, भला उनके पास इतने रुपये कहाँ होंगे? ज्ञान, नहीं मुझे पक्की खबर मिली है, जिन लोगों ने रुपये पाए हैं वे खुद अपनी जबान से कहते हैं। श्रद्धा, तुमसे तो उन्होंने वादा किया था ना कि लखनपुर से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं वहाँ कभी न जाऊँगा। ज्ञान, हाँ कहा तो था और मैंने उन पर विश्वास कर लिया था, लेकिन आज विदित हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संसार के मित्र होते हैं पर अपने घर के शत्रु। जरा इसमें चचा साहब का ही हाथ है। श्रद्धा, पहले उनसे पूछ तो लो, मुझे विश्वास नहीं आता कि उनके पास इतने रुपये होंगे। ज्ञान, उनकी कूटनीति ने मेरे सारे मनसूबों को मिट्टी में मिला दिया। जब उनको मुझसे इतना वैमनस्य है तो मैं नहीं समझता कि उन्हें अपना भाई कैसे समझूं। बिरादरी वालों ने उनका जो तिरस्कार किया वह संगत नहीं था, विदेश निवास आत्मीयता का नाश कर देता है। श्रद्धा, तुम्हें भ्रम हुआ है। ज्ञान, फिर वही बच्चों की सी बातें करती हो, तुम क्या जानती हो कि उनके पास रुपए थे या नहीं? श्रद्धा, तो जरा वहाँ तक चले ही क्यों नहीं जाते? ज्ञान, अब नहीं जा सकता, मुझे उनकी सूरत से घृणा हो गई। उन्होंने असामियों का पक्ष लिया है तो मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जमींदार के 52 हाथ होते हैं, लखनपुर वालों को ऐसा कुचलूंगा कि उनकी हड्डियों का पता ना चलेगा। भैया के मन की बात मैं जानता हूँ, तुम्हें सरल स्वभाव हो, उनकी तह तक नहीं पहुँच सकती। उनका उद्देश्य इसके सिवा कुछ नहीं है कि मुझे तंग कर और असामियों को उभार कर मुसल्लम गाँव हथिया लें और हम तुम कहीं के न रहें। अब उन्हें खूब पहचान गया, रंगे हुए सियार हैं, मन में और मुंह में और फिर इसने अपना धर्म खो दिया, वह जो कुछ न करे वह थोड़ा है। इनसे तो बेचारा ज्वाला सिंह फिर भी अच्छा है, उसने जो कुछ किया न्याय समझ कर किया, मेरा आहित न करना चाहता था, एक प्रकार से मैंने उसके साथ बड़ा अन्याय किया, उसे देश भर में बदनाम कर दिया। इन बातों को याद करने से दुख होता है। श्रद्धा, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। शीलमढ़ी की महरी आज आई थी, कहती थी 3-4 दिन में चले जाएंगे, दर्जा भी घटा दिया गया है। ज्ञान शंकर ने चौंक कर कहा, सच? श्रद्धा, नीलमणि कल आने वाली है, विद्या बड़े संकोच में पड़ी हुई है। ज्ञान, मुझसे बड़ी भूल हुई, इसका शोक जीवन पर्यंत रहेगा। मुझे तो अब इसका विश्वास हो जाता है कि भैया ने उनके कान भी भर दिए थे। ये जिस दिन वह मौका देखने गए थे उसी दिन भैया भी लखनपुर पहुंचे। बस इधर तो ज्वाला सिंह को पट्टी पढ़ाई, उधर गांव वालों को पक्का पोढ़ा कर दिया। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह इतनी दूर की कौड़ी लगाएंगे, नहीं तो मैं पहले से ही चौकन्ना रहता। श्रद्धा ने ज्ञान शंकर को अनादर की दृष्टि से देखा और वहां से उठकर चली गई। दूसरे दिन शीलमढ़ी आई और दिन भर वहां रही। चलते समय विद्या और श्रद्धा से गले मिलकर खूब रोई। ज्वाला सिंह 5 दिन और रहे। ज्ञान शंकर रोज उनसे मिलने का विचार करते, लेकिन समय आने पर कातर हो जाते थे। भय होता कहीं उन्होंने इन आक्षेपपूर्ण लेखों के चर्चा छेड़ दी तो क्या जवाब दूंगा। धांधली तो कर सकता हूँ, साफ मुकर जाऊँ कि मैंने लेख नहीं लिखा, मेरे नाम से तो कोई लेख छपा नहीं, किंतु शंका होती थी कि कहीं इस प्रपंच में ज्वाला सिंह की आंखों में और न गिर जाऊँ। 5वें दिन ज्वाला सिंह वहां से चले। स्टेशन पर मित्रजनों की अच्छी संख्या थी, प्रेम शंकर भी मौजूद थे। ज्वाला सिंह मित्रों से हाथ मिला मिलाकर विदा होते थे। गाड़ी छूटने में 1-2 मिनट ही बाकी थे, इतने में ज्ञान शंकर लपकते हुए प्लेटफॉर्म पर आया, पीछे की श्रेणी में खड़े हो गए। आगे बढ़कर मिलने की हिम्मत न पड़ी। ज्वाला सिंह ने उन्हें देखा और गाड़ी से उतर कर उनके पास आया, गले से लिपट गए। ज्ञान शंकर की आंखों से आंसू बहने लगे। ज्वाला सिंह रोते थे कि चिरकाल की मैत्री का ऐसा शोक में अंत हुआ। ज्ञान शंकर रोते थे कि हाय, मेरे हाथ में सच्चे निश्चल निष्प्रिय और हितैषी मित्र का अमंगल हुआ। गार्ड ने झंडी दिखाई तो ज्ञान शंकर ने कंपित स्वर में कहा, भाईजान मैं अत्यंत लज्जित हूँ। ज्वाला सिंह बोले, उन बातों को भूल जाइए ज्ञान, ईश्वर ने चाहा तो इसका प्रतिकार कर दूंगा। ज्वाला, कभी कभी पत्र लिखते रहिएगा, भूल ना जाइएगा। लोगों को दोनों मित्रों के इस सद्व्यवहार पर कुतूहल हुआ। उनके विचार में इस घाव को भरना दुस्तर था। सबसे ज्यादा आश्चर्य प्रेम शंकर को हुआ, जो ज्ञान शंकर को उससे कहीं असज्जन समझते थे, जिसने वह वास्तव में थे। अपील खारिज होने के बाद ज्ञान शंकर ने गोरखपुर की तैयारी की। सोचा, इस तरह से लखनपुर से आजीवन गला न छूटेगा, एक न एक उपद्रव मचा ही रहेगा, कहीं गोरखपुर में रंग जम जाए तो 2-3 वर्षों में कई लखनपुर हाथ आ जाएंगे। विद्या भी इस स्थिति का विचार करके सहमत हो गई। उसने सोचा, अगर दोनों भाइयों में यूं ही मनमुटाव रहा तो अवश्य बंटवारा हो जाएगा, तब 1,000 सालाना आमदनी में निर्वाह न हो सकेगा। इनसे और काम तो हो सकेगा नहीं, भला से जो काम मिलता है वही सही। अतः जन्माष्टमी के उत्सव के बाद ज्ञान शंकर गोरखपुर जा पहुंचे, प्रेम शंकर से मुलाकात तक न की। प्रभात का समय था, गायत्री पूजा कर रही थी कि दरबार ने ज्ञान शंकर के आने की सूचना दी। गायत्री ने तत्क्षण तो उन्हें अंदर न बुलाया। हाँ, जो पूजा 9 बजे समाप्त होती थी वह 7 बजे समाप्त कर दी। तब अपने कमरे में आकर उसने एक सुंदर साड़ी पहनी, बिखरे हुए केश सवारे और गौरव के साथ मसनत पर जा बैठी। लॉन्डी को इशारा किया, ज्ञान शंकर को बुला लाया। वह अब रानी थी, वह उपाधि उसे हाल ही में प्राप्त हुई थी। ज्ञान शंकर से यथोचित आरोह से मिलना चाहती थी। ज्ञान शंकर बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें यहाँ का ठाट बाट देखकर विस्मय हो रहा था। द्वार पर 2 दरबान वर्दी पहने टहल रहे थे। सामने की अंगनाई में 1 घंटा लटका हुआ था। एक ओर अस्तबल में कई बड़ी रास के घोड़े बधे हुए थे, दूसरी ओर एक टीन में झोपड़े के 2 हवा गाड़ियाँ थीं। दलान में पिंजरे लटकते थे, किसी में मैना थे, किसी में पहाड़ी श्यामा, किसी में सफ़ेद तोता। महिलाएं तीखा रहे अलग कटघरे में पले हुए थे। भवन के सन्मुख ही एक बंगला था, फर्श और मेज कुर्सियों से सजा हुआ था, यही दफ्तर था। यद्यपि अभी बहुत सवेरा था पर कर्मचारी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। जिस कमरे में वह स्वयं बैठे हुए थे वह दीवान खाना था। उसकी बड़ी सजावट बड़े सलीके से की गई थी। ऐसी बहुमूल्य कालीने और ऐसे बड़े बड़े आईने उनकी निगाह से न गुजरे थे। कई दलानों और आंगनों से गुजरने के बाद जब वो गायत्री की बैठक में पहुंचे तो उन्हें अपने सम्मुख विलासमय सौंदर्य की एक अनुपम मूर्ति नजर आई। उसके एक एक अंग से गर्व और गौरव आभासित हो रहा था। यह वह पहले किसी प्रसन्न मुख, सरल प्रकृति, विनयपूर्ण गायत्री न थी। ज्ञान शंकर ने सिर झुकाए सलाम किया और कुर्सी पर बैठ गए। लज्जा ने सिर न उठाने दिया। गायत्री ने कहा, आइए महाशय आइए। क्या विद्या छोड़ती ही न थी, और तो सब कुशल है? ज्ञान, जी हाँ, सब लोग अच्छी तरह हैं। माया तो चलते समय बहुत जिद कर रहा था कि अभी मौसी घर चलूंगा, लेकिन अभी बुखार से उठे हुए थोड़े ही दिन हुए, इसी कारण साथ न लाया, आपको नित्य याद किया करता है। गायत्री, मुझे भी उसकी प्यारी प्यारी भोली सूरत याद आती है। कई बार इच्छा हुई कि चलूं, सबसे मिलाऊं, पर रियासत के झमेलों से फुर्सत ही नहीं मिलती। यह भोज आप संभालें तो जरा सांस लेने का अवकाश मिले। आपके लेख का तो बड़ा आदर हुआ, खुशामद करना कोई आपसे सीख ले। ज्ञान, जो कुछ हुआ मेरी श्रद्धा का अल्पांश था। गायत्री ने गुणज्ञता के भाव से मुस्कुराकर कहा, जब थोड़ा सा पाप बदनाम करने को पर्याप्त हो तो अधिक क्यों किया जाए। कार्तिक में हिज एक्सलेंसी यहाँ आने वाली है, इस अवसर पर मेरी उपाधि प्रदान का जलसा करना निश्चय किया है। अभी तक तो केवल गजट में सूचना छपी है, अब दरबार में यथोचित समारोह और सम्मान के साथ उपाधि से विभूषित की जाऊंगी। ज्ञान, तब तो अभी से दरबार की तैयारी होनी चाहिए। गायत्री, आप बहुत अच्छे अवसर पर आए हैं, दरबार के मंडप में अभी से हाथ लगा देना चाहिए। मेहमानों का ऐसा आदर सत्कार किया जाए कि चारों ओर धूम मच जाए। रुपयों की जरा भी चिंता मत कीजिए, आप भी इस अभिनय के सूत्रधार हैं, आपके यहाँ तो इसका सूत्रपात होना चाहिए। एक दिन मैं जिलाधीश से आपका जिक्र किया था, पूछने लगे उनके राजनीतिक विचार कैसे हैं। मैंने कहा बहुत ही विचारशील शांत प्रकृति के मनुष्य हैं। यह सुनकर बहुत खुश हुए और कहा वह आ जाए तो एक बार जलसे के संबंध में मुझसे मिल लें। इसके बाद गायत्री ने इलाके की सुव्यवस्था और अपने संकल्पों की चर्चा शुरू की। ज्ञान शंकर को उसके अनुभव और योग्यता पर आश्चर्य हो रहा था। उन्हें भय होता था कदाचित मैं इन कार्यों का उत्तम रीति से संपादन न कर सकूं। उन्हें देहाती बैंकों का बिल्कुल ज्ञान न था, निर्माण कार्य से परिचित न थे, कृषि के नए आविष्कारों से कोरे थे, किंतु इस समय अपनी अयोग्यता प्रकट करना नितांत अनुचित था। मैं गायत्री की बातों पर ऐसी मर्मज्ञता सिर हिलाते थे और बीच बीच में ऐसी टिप्पणियां करते थे मानो इन विषयों में पारंगत हों। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य पर भरोसा था, इनके बल पर वह कोई काम हाथ में लेते हुए न हिचकते थे। ज्ञान शंकर को दो चार दिन भी शांति से बैठकर काम को समझने का अवसर न मिला। दूसरे दिन से दरबार की तैयारियों में दत्तचित होना पड़ा। प्रातःकाल से संध्या तक सिर उठाने की फुर्सत न मिली, बार बार अधिकारियों से राय लेनी पड़ी। सजावट की वस्तुओं को एकत्र करने के लिए बार बार रईसों की सेवा में दौड़ना पड़ता। ऐसा जान पड़ता था कि यह कोई सरकारी दरबार है, लेकिन कर्तव्यशील उत्साहित पुरुष थे, काम से घबराते न थे, प्रत्येक काम को पूरी जिम्मेदारी से करते थे। वह संकोच और अविश्वास जो पहले किसी मामले में अग्रसर होने न देता था अब दूर होता जाता था। उनकी अध्यवसायशीलता पर लोग चकित हो जाते थे। 2 महीनों के अविश्रांत उद्योग के बाद दरबार का इंतजाम पूरा हो गया। जिलाधीश ने स्वयं आकर देखा और ज्ञान शंकर की तत्परता और कार्यदक्षता की खूब प्रशंसा की। गायत्री से मिले तो SSEO के मैनेजर की नियुक्ति पर उसे बधाई दी। अभिनंदन पत्र की रचना का भार भी ज्ञान शंकर पर ही था। साहब बहादुर ने उसे पढ़ा तो लोटपोट हो गए और नगर के मान्य जनों से कहा मैंने किसी हिंदुस्तानी कलम में चमत्कार नहीं देखा। अक्टूबर मास की 15 तारीख दरबार के लिए नियत थी। लोग सारी रात जागते रहे, प्रातःकाल से सलामी की तोपे दगने लगे। अगर उस दिन की कार्रवाई का संक्षिप्त वर्णन किया जाए तो एक ग्रंथ बन जाए। ऐसे अवसरों पर उपन्यासकार अपनी कल्पना को समाचार पत्रों के संवाददाताओं को सुपुर्द कर देते हैं। रेडियो के भूषणा अलंकरों की बहार, रईसों की सज धज की छटा देखनी हो, दावत की चटपटी स्वादयुक्त सामग्रियों का मजा चखना हो और शिकार के तड़प झड़प का आनंद उठाना हो तो अखबारों के पन्ने उलटिए। वहाँ आपको सारा विवरण अत्यंत सजीव चित्रमय शब्दों में मिलेगा। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट शिकार खेलने अफ्रीका गए थे तो संवाददाताओं की एक मंडली उनके साथ गई थी। सम्राट जॉर्ज पंचम जब भारतवर्ष आए थे तब संवाददाताओं की एक पूरी सेना उनके जुलूस में थी। यह दरबार इतना महत्वपूर्ण न था, इस पर भी पत्रों से मैं महीने तक इसकी चर्चा होती रही। हम इतना ही कह देना काफ़ी समझते हैं कि दरबार विधिपूर्वक समाप्त हुआ, कोई त्रुटि न रही, प्रत्येक कार्य निर्दिष्ट समय पर हुआ, किसी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाई। इस विलक्षण सफलता का सेहरा ज्ञान शंकर के सिर था। ऐसा मालूम होता था कि सभी कठपुतलियाँ इन्हीं के इशारों पर नाच रही हैं। गवर्नर महोदय ने विदाई के समय उन्हें धन्यवाद दिया, चारों तरफ वाह वाह हो गई। संध्या समय था, दरबार समाप्त हो चुका था। ज्ञान शंकर नगर के मान्यजनों के साथ गवर्नर को स्टेशन तक विदा करके लौटे थे और एक कोच पर आराम से लेटे सिगार पी रहे थे। आज उन्हें सारा दिन दौड़ते गुजरा था, जरा भी दम लेने का अवकाश न मिला था। वह कुछ अलसाए हुए थे, पर इसके साथ हृदय पर वह उल्लास छाया हुआ था जो किसी आशाश्रित सफलता के बाद प्राप्त होता है। वही समय जब अपने कृत्यों का सिंहावलोकन करते थे तो उन्हें अपनी योग्यता पर स्वयं आश्चर्य होता था। कभी 2.5 मास पहले मैं क्या था, एक मामूली आदमी, केवल 2000 चलाना का जमींदार। शहर में कोई मेरी बात भी न पूछता था, छोटे छोटे अधिकारियों से भी दबता था और उनकी खुशामद करता था। अब यहाँ के अधिकारी वर्ग मुझसे मिलने की अभिलाषा रखते हैं, शहर के मान्यगण अपना नेता समझते हैं। बनारस में तो सारी उम्र बीत गई, तब भी यह सम्मान पद न प्राप्त होता। आज गायत्री का मिजाज भी आसमान पर होगा। मुझे जरा भी आशा न थी कि वह इस तरह बेधड़क मंच पर चली जाएगी। वह मंच पर आई तो सारा दरबार जगमगाने लगा था। उसके कुंदन वर्ण पर अघराई साड़ी कैसी छटा दिखा रही थी, उसके सौंदर्य की आभा ने रत्नों की चमक दमक को भी मात कर दिया था। विद्या इससे कहीं रूपवती है, लेकिन उसमें यह आकर्षण कहाँ, यह उत्तेजक शक्ति कहाँ, यह सगर्भिता कहाँ, यह रसिकता कहाँ। उसके सम्मुख आकर आंखों पर, चित्त पर, जबान पर काबू रखना कठिन हो जाता है। मैंने चाहा था कि इसे अपनी ओर खींचूं, इससे मान करूं, किंतु कोई शक्ति मुझे बलात् उसकी ओर खींच लिए जाती है। अब मैं रुक नहीं सकता, कदाचित वह मुझे अपने समीप आते देखकर पीछे हटती है। मुझसे स्वामिनी और सेवक के अतिरिक्त और कोई संबंध नहीं रखना चाहती, और मेरी योग्यता का आदर करती और मुझे अपनी सम्मान तृष्णा का साधन मात्र बनाना चाहती है। उसके हृदय में अब कोई अभिलाषा है तो वह सम्मान प्रेम है, यदि यही वह उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मैं इसका आवाहन करके यहाँ पहुँचा हूँ और इसी की बदौलत एक दिन मैं उसके हृदय में प्रेम का बीज भी अंकुरित कर सकूँगा। ज्ञान शंकर इन विचारों मग्न थे कि गायत्री ने अंदर बुलाया और मुस्कुरा कर कहा, आज के सारे आयोजन का श्रेय आपको है, मैं हृदय से आपकी अनुग्रहित हूँ। साहब बहादुर ने चलते समय आपकी बड़ी प्रशंसा की, आपने मजदूरों की मजदूरी तो दिली दी है, मैं इस आयोजन में बिगाड़ लेकर किसी को दुखी नहीं करना चाहती। ज्ञान, जी हाँ, मैंने मुख्तार से कह दिया था। यात्री, मेरी ओर से प्रत्येक मजदूर को एक एक रुपया इनाम दिला दीजिए। ज्ञान, 500 मजदूर से कम ना होंगे। यात्री, कोई हर्ज नहीं, ऐसे अवसर रोज नहीं आया करते। जिस ओवरसियर ने पंडाल बनाया है उसे 100 इनाम दे दीजिए। ज्ञान, वह शायद स्वीकार न करे। गायत्री, यह रिश्वत नहीं इनाम है, स्वीकार क्यों न करेगा। खर्राशों और आतशबाजों को कुछ मिलना चाहिए। ज्ञान, तो फिर हलवाई और बामर्ची खानसामे और खिदमतगार को पीछे छोड़े जाएं। गायत्री, नहीं, कदापि नहीं, उन्हें 20-20 से कम न मिले। ज्ञान हंसकर, मेरी सारी मितव्ययिता निष्फल हो गई। गायत्री, वाह, उसी की बदौलत तो मुझे हौसला हुआ है। मजदूर को मजदूरी कितनी ही दीजिए खुश नहीं होगा, लेकिन इनाम पाकर खुशी से फूल उठता है। आपने नौकरों को भी यथायोग्य कुछ न कुछ दिलवा दीजिए। ज्ञान, जी हाँ, जब बाहर वाले लूट मचाए तो घर वाले क्यों गीत गाएं। गायत्री, नहीं, घर वालों को पहला हक है जो आठों पहर के गुलाम हैं। सब आदमियों को यहीं बुलवाइए, मैं अपने हाथ से उन्हें इनाम दूंगी, इसमें विशेष आनंद मिलेगा। ज्ञान, घंटों की झंझट है, 12 बज जाएंगे। गायत्री, यह झंझट नहीं है, यह मेरी हार्दिक लालसा है। अब मुझे कई बड़े बड़े अनुष्ठान करने हैं, यह मेरा चढ़ाऊ कंगन है, यह विद्या के भेंट हैं, कल इसका पार्सल भेज दीजिएगा और 500 नकद। ज्ञान, सिर झुकाकर, इसकी क्या जरूरत है, कौन सा मौका है। गायत्री, और कौन सा मौका होगा, मेरे लड़की लड़कियां अभी तो नहीं है कि उनकी विवाह के दिल के अरमान निकालूंगी। यह कंगन उसे पसंद भी था, पिछले साल इटली से मंगवाया था। अब आपसे भी मेरी यह प्रार्थना है, आप मुझसे छोटे हैं, आप भी अपना हक वसूल कीजिए और निर्दयता के साथ। ज्ञान शंकर ने शरमाते हुए कहा, मेरे लिए आपकी कृपा दृष्टि ही काफ़ी है, इस अवसर पर मुझे जो कीर्ति प्राप्त हुई है वह मेरा इनाम है। गायत्री, जी नहीं, मैं न मानूंगी, इस समय संकोच छोड़िए और सूद खाने वालों की भांति कठोर बन जाइए। यह आपकी कलम है जिसने मुझे इस पद पर पहुँचाया है, नहीं तो जिले में मेरी जैसी कितनी स्त्रियाँ हैं, कोई उनकी बात भी न पूछता। इस कलम की यथायोग्य पूजा किए बिना मुझे तस्कीन न होगी। ज्ञान, इसकी ज़रूरत तो तब होगी जब मुझे उससे कम आनंद प्राप्त होगा जितना आपको हो रहा है। गायत्री, मैं यह तर्क वितर्क एक बिना सुनूंगी, आप स्वयं कुछ नहीं कहते, इसलिए आप की ओर से मैं ही कह देती हूँ। आप अपने लिए बनारस में अपने घर से मिला हुआ एक सुंदर बंगला बनवा लीजिए, 4 कमरे हों, चारों तरफ बरामदे, बरामदों पर विलायती खपरेल हो और कमरों पर लद्दाब की छत, छत पर बरसात के दिन हवादार कमरा बना लीजिए। खुश हुए? ज्ञान शंकर ने कृतज्ञतापूर्ण भाव से देखकर कहा, खुश तो नहीं हूँ, अपने ऊपर ईर्ष्या होती है। गायत्री, बस दीप मालिका से आरंभ कर दीजिए, अब बतलाइए माया को क्या दें। ज्ञान, माया कुछ भी न कुछ न चाहिए, उसका नाम अपने पास अमानत रहने दीजिए। गायत्री, आप 9 नगद 13 उधार वाली मसल भूले जाते हैं। ज्ञान, अमानत पर तो कुछ न कुछ ब्याज मिलता है। गायत्री, अच्छी बात है, पर इस समय उसके लिए कलकत्ते किसी कारखाने से एक छोटा सा टंडम मंगा दीजिए और मेरा टांगन तो तांगे से में चलता है, बनारस भेज दीजिए। छोटी लड़की के लिए हार बना लीजिए जो 500 से कम का ना हो। ज्ञान शंकर यहाँ से चले तो पैर धरती पर न पड़ते थे। बंगले की अभिलाषा उन्हें चिरकाल से थी और समझते थे यह मेरे जीवन का मधुर स्वप्न ही रहेगी, लेकिन सौभाग्य की एक ही दृष्टि ने वह चिर संचित अभिलाषा पूर्ण कर दी। आरंभ उत्साहवर्धक हुआ, देखिए अंत क्या होता है।